ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸ್ವಾಗತಂ, ಸುಸ್ವಾಗತಂ, ಮಧುರ್ ಸ್ವಾಗತಂ. ಆಜ್ ಇಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿ ವೇಲಾ ಮೇ, ಇಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸತ್ರ ಮೇ ಆಪ್ಕಾ ಹಮ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇ ಆಯೇ ಹುಯೇ ಸಭಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕೆ ಇಸ್ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮೇ ಔರ್ ಪ್ರಿಯಜನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಫೂಲೋ ಕಿ ವಾದಿ ಮೇ ಹಮ್ ಆಪ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಇಸ್ ಮಹಫಿಲ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಬುಲಾತಿ ಹೈ. ಫೂಲೋ ಕಿ ವಾದಿ ಮೇ ಹಮ್ ಆಪ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಇಸ್ ಮಹಫಿಲ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಬುಲಾತಿ ಹೈ. ಆಪ್ಕಿ ತಶ್ರೀಫ್ ಕಾ ಹೈ ಖುಲೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಇಂತಜಾರ್, ಆಪ್ಕಿ ತಶ್ರೀಫ್ ಕಾ ಹೈ ಖುಲೆ ದಿಲ್ ಸೆ ಇಂತಜಾರ್. ಹರ್ ಖುಷಿ ಸೆ ದಿಲ್ ಕೋ ಸಜಾತಿ ಹೈ, ಹರ್ ಖುಷಿ ಸೆ ದಿಲ್ ಕೋ ಸಜಾತಿ ಹೈ. ಔರ್ ಆಜ್ ಕಿ ಸುಂದರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೋ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಚಢಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮಾರೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹೈ ಆದರಣೀಯ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಿ ದೀದಿ ಜಿ. ಹಮ್ ಜೋರ್ದಾರ್ ಕರ್ತಲ್ ಧ್ವನಿ ಸೆ ಆಪ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ಆಜ್ ಕಾ ಯ ಪ್ರಥಮ ಸತ್ರ ಹೈ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಯ್. ವೆಸೆ ತೋ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಆಪ್ ಹಮ್ಕೋ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಭೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಪೂರೆ ವಿಶ್ವ ಕೋ ಭೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ. ಪರಂತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮೇ ಆಪ್ ಆಯೆ ಹೈ, ತೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಾ ಜೋ ಪಹಲಾ ಲೆಸನ್ ಹೈ ಹೂ ಆಮ್ ಆಯ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್, ತೋ ವೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಸುನೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಿ ದೀದಿ ಜಿ ಸೆ ಆದರಣೀಯ ಶೈಲಿ ಬೆನ್.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಭಿ ಪ್ರೇಮ ಸೆ ಬೋಲೆಂಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಸೆ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ದಿನ ತಕ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಯಹಾಂ ರಹೆಂಗೆ, ಇಸ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಸುನೆಂಗೆ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಅನುಭವ ಭೀ ಕರೆಂಗೆ. ಇಸಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಕೋ ಸಮಜ್ನೆ ಕಾ ಆಜ್ ಕಾ ಯಹ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಹೈ. ತೋ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ್ ಮೈ ಫಿರ್ ಸೆ ಅಪ್ನಿ ತರಫ್ ಸೆ ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರ ಕೆ ಇಸ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮೇ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ. ಆಪ್ ಅಪ್ನೆ ಹೀ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೇ ತಾಲಿಯಾ ಬಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರೀಸ್ ಕಾ ಮುಖ್ಯಾಲಯ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಜೋ ಕಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ ಆಜ್ ಮಾನವತಾ ಕೋ ಅಪ್ನಿ ಸೇವಾಯೇ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕಾ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಅಪ್ನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನಾ ಕೋ ಜಗಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪಾವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಸಭಿ ಯಹಾಂ ಪಧಾರೆ ಹೈ. ತೋ ಆಜ್ ಕಾ ಜೋ ಪಹಲಾ ಸೆಷನ್ ಹಮ್ ಲೇನೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ ಯೇ ಹೈ ಸ್ವಯಂ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ. ಹಮ್ ಜಬ್ ಭಿ ಕಿಸಿ ಕೋ ಅಪ್ನಿ ಪಹಚಾನ್ ದೇತೆ ಹೈ, ಅಪ್ನಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇತೆ ಹೈ, ತೋ ಕ್ಯಾ ಬತಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ? ಹಮ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಕಿಸ್ ದೇಶ ವಾ ಧರ್ಮ ಸೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಹಮ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಢಾಯಿ ಹಮ್ನೆ ಕಿತ್ನಾ ಪಢಿ ಹೈ, ಕಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೆ ಆಜ್ ಹಮ್ ಅಪ್ನಿ ಸೇವಾಯೆ ದೇ ರಹೆ ಹೈ. ಸಾಥ್ ಹಿ ಹಮ್ ಅಪ್ನಾ ನಾಮ ಬತಾತೆ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಲಿಖತ್ ವಾಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಹಮ್ ಅಪ್ನಿ ಫೋಟೋ ಲಗಾತೆ ಹೈ, ಅಪ್ನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾ ಪುರುಷ ಜೆಂಡರ್ ಕಿ ಹಮ್ ಪಹಚಾನ್ ದೇತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಅಧಿಕ ಬತಾನಾ ಹೋ ತೋ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬತಾತೆ, ಅಪ್ನಿ ಹಾಬೀಸ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬತಾತೆ ಔರ್ ಯೇ ಹಮ್ ಕಹತೆ ಕಿ ಯೇ ಮೈ ಹೂ. ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾನಾ ಹಮ್ ಅಪ್ನಿ ಯೇ ಸಾರಿ ಪಹಚಾನ್ ದೇ ರಹೆ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಯಹಿ ಮೇರಿ ಅಸಲಿ ಪಹಚಾನ್ ಹೈ? ಇಸೆ ಸಮಜ್ನಾ ಔರ್ ಮಹಸೂಸ್ ಕರ್ನಾ ಆಜ್ ಕೆ ಸೆಷನ್ ಕಾ ಯಹಿ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಹೈ. ದೇಖಿಯೇ ಯೇ ಜೋ ಭೀ ನಾಮ್ ರೂಪ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ರಿಲಿಜನ್ ಯೇ ಸಾರಿ ಚೀಜೆ ಜೋ ಹಮ್ನೆ ಬತಾಯಿ ಯೇ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಶರೀರ ಕಿ ಪಹಚಾನ್. ಯಾ ಯೂ ಕಹೆ ಕಿ ಇಸ್ ವಿಶ್ವ ನಾಟಕ ಮೇ ಜೊ ಏಕ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಹಮೇ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಹೈ ಯೇ ಉಸ್ ಕಿರ್ದಾರ್ ಕಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೈ. ಯಾ ಜೊ ಶರೀರ ಹೈ ಮಾನವ ಶರೀರ ಜಿಸೆ ಕಹಾ ಗಯಾ ಕಿ ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಜಲ್ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಔರ್ ಆಕಾಶ ಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೈ. ಇನ್ ಪಾಂಚೋ ತತ್ವೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಬನೆ ಹುವೆ ಶರೀರ ಕಿ ವೋ ಪಹಚಾನ್ ಹೈ. ಅರ್ಥಾತ್ ಜೋ ನಾಮ ಹಮ್ ಬತಾತೆ ಕಿ ಯೇ ಮೈ ಹೂ ವೋ ನಾಮ ಕಿಸ್ಕಾ ಹೈ? ಶರೀರ ಕಾ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಜೋ ಹಮ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ವೋ ಶರೀರ ಕಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೈ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲಿಜನ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಯೇ ಸಾರೇ ವೋ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಹೈ हमारे शरीर की या हमारे किरदार की पहचान है वो। तो मैं कौन हूं, क्या सच में मैं यह शरीर हूं? आप सभी अपना राइट हैंड उठाएं। अब आप अपने इस हैंड के लिए, अपने हाथ के लिए क्या कहेंगे, ये मैं हूं या मेरा हाथ है? बोले सभी, मेरा हाथ। इसी तरह से पैर के लिए, सिर के लिए, आंखों के लिए क्या कहेंगे? क्या कभी कहा मैं सिर, मैं आंखें, मैं पांव? नहीं, क्या कहा हमेशा? मेरा। और यह मैं और मेरा शब्द जो हर दिन, हर रोज हम कई कई बार यूज करते हैं, इसमें आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा सार समाया हुआ है। यह शरीर भी मेरा है, न कि मैं शरीर हूं। तो पहचान अपनी जहां हम ढूंढने निकले हैं कि फिर मैं कौन, अगर मैं यह शरीर नहीं हूं, यह नाम मैं नहीं हूं, यह डेजिग्नेशन मैं नहीं हूं, मैं पायलट, मैं टीचर, मैं होटेलियर नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो उसी को आज हम जानेंगे कि इस शरीर को चलाने वाली जो एक आध्यात्मिक चेतना है वह मैं हूं। देखिए, शरीर के किसी पार्ट के लिए हम हमेशा मेरा शब्द यूज करेंगे, लेकिन जब भी मन की भावनाओं की बात होगी, जब भी हम अपनी मनस्थिति का वर्णन कर रहे होंगे, जब भी किसी कर्म की बात आएगी, तो हम मैं शब्द यूज करते हैं। मैं आज बहुत खुश हूं, मैं आज उदास हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये पाना चाहती हूं। अर्थात चेतना से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वहां हम मैं शब्द यूज करते हैं, और जहां शरीर से जुड़ी हुई बातें होती हैं वहां मेरा शब्द यूज होता है। और यही मैं और मेरा हमें अपनी असलियत की ओर, हमारी रियल आइडेंटिटी की तरफ हमें ले चलता है कि मैं यह पांच तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं हूं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली, इसका ऑपरेटर, इसका मालिक मैं एक चेतना हूं, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक अविनाशी ऊर्जा हूं। ऊर्जा व एनर्जी के लिए हमेशा कहा जाता है, एनर्जी नैदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। ऊर्जा का ना निर्माण होता है ना उसका विनाश होता है। तो वो अविनाशी ऊर्जा मैं हूं। आज तक जब भी हम मिरर के सामने गए तो जो बॉडी का रूप दिखा, हमने उसी को अपना रूप समझ लिया, लेकिन इस बॉडी के अंदर निवास करने वाली, इसको चलाने वाली जो चेतना है, जिसे हम आत्मा कहते, जिसे हम सोल कहते, रूह कहते, स्पिरिट कहते, तो उस रूह का, उस आत्मा का स्वरूप कैसा है? मिरर में या जब भी हम सेल्फी खींचते हैं तब बॉडी की फोटो आती है, बॉडी की इमेज हमें दिखती है, लेकिन मैं जो आत्मा हूं वो मैं कैसा हूं? तो यहां बताया गया, एक बहुत छोटा सा, नन्हा सा सितारा। कुछ सेकंड के लिए सभी अपनी आंखें बंद करें, सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, सिर्फ थोड़ा सा आंखें बंद करें और याद करें रात के समय खुले आसमान में चमकते हुए सितारे, लाखों तारे हैं आसमान में, कोई कम चमक रहे हैं, कोई अधिक चमक रहे हैं, कोई अकेले अकेले हैं, कोई ग्रुप्स में हैं। उन सभी सितारों को देखते हुए एक ऐसे सितारे पर मन को फोकस करें जो ब्राइटेस्ट है, सबसे अधिक तेजस्वी। और वो चमकता हुआ सुंदर सफेद प्रकाश का सितारा अपने मस्तक के बीच अनुभव करे, देखे मन की आंखों से, मस्तक के बीचों बीच चमकता हुआ एक सफेद सितारा, जिसका प्रकाश, जिसकी ऊर्जा शरीर के अंग अंग में हर सेल हर ऑर्गन को चेतन कर रही है और बताए अपने आप को, मैं यह सितारा अर्थात आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु और अविनाशी हूं। आंखें खोले सभी, ये है मेरी पहचान। शरीर से भले ही हम धर्म जाति रूप रंग फीचर्स के आधार पर अलग अलग है, सभी के फीचर्स अलग है ना, कोई भी एक जैसा नहीं है, इवन ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते। तो शरीर के रूप रंग सबके अलग अलग है, लेकिन जो मैं असली हूं, रियल जो मेरा फॉर्म है, वो उसी सितारे के समान है। जैसे आसमान के सितारे रोशनी में कम ज्यादा चमक वाले होते हैं, इसी प्रकार आत्मा रूपी सितारा अपने अपने गुण और शक्तियों के आधार से, अपनी अपनी प्योरिटी के लेवल के आधार से कम या अधिक चमकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही है सबसे पहले ये महसूस करना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। लेकिन उस आत्मा की कॉन्शियसनेस को हम कायम रख सके, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सके, इसके लिए आत्मा के बारे में कुछ और बातों को जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने जाना कि मैं और मेरे के बीच में मैं कौन, जवाब दे सभी, मैं कौन, आत्मा, और मेरा शरीर। मैं आत्मा कैसी हूं, रूप कैसा है आत्मा का, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद प्रकाश का अति सूक्ष्म सितारा, बिंदु है आत्मा, और इतनी छोटी बिंदु है कि हम इन खुली आंखों से आत्मा को देख नहीं सकते, और ना ही साइंस के किसी भी पावरफुल से पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी आत्मा को देखा जा सकता है। और शायद यही कारण रहा, मनुष्य की मानसिकता मेंटेलिटी क्या होती है, जो दिखता है वो बिकता है ना। दिखता क्या है, किसी को भी देखो, अपने आप को देखो, शरीर दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं है। इसलिए हमने कहीं ना कहीं अपने आप को आत्मा के बदले शरीर समझना शुरू किया, और वहां से शुरू हुए सारे मतभेद, सारे भेदभाव। आज संसार में जितने डिफरेंसेस है, जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पर्सनल लड़ाई है घर की, चाहे देशों के बीच चलने वाली लड़ाइयां है, इस मॉडर्न सोसाइटी के मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो अराइज हुए हैं, सुपरफिशियल लेवल पर देखा जाए तो हम अलग अलग रीजंस बता सकते हैं, लेकिन अगर डीप रूटेड कॉज को अगर हम देखें, मूल कारण को अगर हम खोजें, तो वो यही निकलता है कि हमने अपनी आइडेंटिटी को भूलकर खुद को कुछ अलग समझ लिया है। जो मैं हूं उसे भूलकर जो मेरा है उसे मैं समझ लिया है। तो आध्यात्मिकता का सबसे पहला पाठ अपने मैं को समझना कि मैं आत्मा हूं। तो फिर शरीर का क्या रोल है, अगर मैं आत्मा हूं तो शरीर क्यों लिया आत्मा ने। जैसे कि कहा, आत्मा एक एनर्जी है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने पावर हाउस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, कनेक्शन लिया, लेकिन सीधा उन तारों को पकड़कर तो हमें हवा नहीं लगने वाली है, उसे किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को देना होगा। पंखा चलेगा, एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा, टीवी, कंप्यूटर, ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा वो एनर्जी अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ इलेक्ट्रिकल करंट लेकर हम क्या करेंगे। बिल्कुल वही बात है कि आत्मा भी एक एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी में जितनी सारी क्वालिटीज है, जितने आइडियाज है, थॉट्स है, बहुत सारी पावर है, उसको वो एक्सप्रेस कैसे करेगी। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आत्मा ने शरीर का आधार लिया, तो ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। प्रकृति अर्थात पांचों तत्वों से बना हुआ शरीर और पुरुष अर्थात आत्मा, इनका रिलेशन बहुत सुंदर तरीके से यहां बताया गया है। जैसे सीप में मोती होता है, ऐसे शरीर रूपी सीप में आत्मा रूपी मोती है। वैल्यू किसकी ज्यादा है, सीप की या मोती की? इसी तरह से ड्राइवर और कार, कार चाहे आप न्यू ब्रांडेड कार ले आए, लेकिन उसको चलाने वाला ही कोई ना हो, तो शरीर तो जरूरी है लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से घर है तो घर का मालिक आत्मा है। आत्मा के लिए श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर बात आती है। कहा गया है कि आत्मा को न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न वायु उसे उड़ा सकता है, न पानी भिगो सकता है, अर्थात आत्मा अविनाशी है। और ये राज, इस रहस्य को अगर हम अच्छे से अपने मन में पक्का करें, तो आज संसार में इंसान को जो सबसे अधिक डर है, कौन सा? मौत का। वो डर हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि संसार की अधिकतर समस्याओं का कारण खुद को आत्मा के बदले शरीर समझना है। जब हम आत्मा की रियलिटी को जानकर आत्म अनुभूति के साथ चलना शुरू करेंगे, स्वयं को समझते हुए दूसरों को भी आत्मा समझते हुए जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में आएंगे, तो कई तरह की निगेटिविटीज हमारी खत्म होती जाएगी, मतभेद खत्म होंगे। और ये जो मौत के डर के कारण कई तरह के गलत काम किए जाते हैं, आज क्या पक्का हो रहा है कि मैं आत्मा और मैं तो कभी मरने ही वाली नहीं हूं, कितनी खुशी की बात। शरीर है तो शरीर समझते रहेंगे, उसका मौत का डर हमेशा रहेगा, लेकिन मैं हूं ही आत्मा और आत्मा कभी नहीं मरने वाली है। तो खुशी हुई आप सबको ये सुनकर कि मैं अमर हूं, कभी मरने वाली नहीं हूं। हाँ, ये चोला कभी कभी हम चेंज कर लेंगे, जैसे ड्रेस पुरानी हो जाती है तो हम उसको चेंज करके नई ड्रेस पहन लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये शरीर एक ड्रेस है। समय के साथ साथ जब ये शरीर रूपी ड्रेस पुराना हो जाता है, तो आत्मा उसको छोड़कर दूसरा शरीर, दूसरा ड्रेस धारण कर लेती है। और आत्मा का शरीर छोड़ना, इसी को मृत्यु कहते हैं। दोबारा वो शरीर लेती है, उसको पुनर्जन्म कहते हैं। तो वास्तव में जन्म, मृत्यु या पुनर्जन्म शरीर का हो रहा है। आत्मा अविनाशी है, वो नहीं मरती है कभी भी। और इसीलिए जो दुख, शोक का या डर का अनुभव होता है, जो बहुत एक्सट्रीम निगेटिव फीलिंग्स है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं आत्मा के अमरत्व को महसूस करते हुए। हमारे जितने सारे सेंस ऑर्गन्स हैं या बॉडी के जितने सारे सेल्स हैं, जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब का संचालन आत्मा करती है। आत्मा शरीर का मालिक है, इन सभी इंद्रियों का कंट्रोल आत्मा के हाथ में है। जैसे हम सभी ने कहीं ना कहीं वो चित्र देखा होगा, पांच घोड़ों का रथ है और सारथी उन पांचों घोड़ों की लगाम को थामे हुए हैं, देखा है? तो ये पांचों घोड़े हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, और उनका कंट्रोल एक्चुअली आत्मा राजा या आत्मा सारथी के हाथ में होना चाहिए। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, और इसीलिए फिर न चाहते हुए भी हम कुछ गलतियां करते हैं, फिर हमें सॉरी बोलना पड़ता है, फिर हमें पछताना पड़ता है, जाने अनजाने में हम अपनों को भी दुखी कर देते हैं। कारण, इंद्रिया बेलगाम हो गई। सेल्फ रियलाइजेशन का या आत्मा को अनुभव करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अब हमें उस लगाम को अपने हाथ में लेना है। अभी तक ये जो बेलगाम घोड़े दौड़ रहे थे, अब हमें उसको कंट्रोल करना है, उनको अपने विवेक शक्ति के आधार से चलाना है। और इसीलिए आत्मा को जानना, समझना और अनुभव करना बहुत आवश्यक है। आत्मा का स्थान आपको दिखाया गया मस्तक के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वह आत्मा का इस शरीर में रहने का स्थान है। जैसे हमने कंपेयर किया था आत्मा और शरीर को ड्राइवर और कार के साथ, अब वो कार चाहे कितनी भी बड़ी हो, ड्राइवर कहां बैठता है? कहां बैठता है? ड्राइविंग सीट पर। और ड्राइविंग सीट माना जहां पर सारे कंट्रोल्स हैं। तो हमारे शरीर में भी यूं तो हर इंद्रिय हमारी इंपॉर्टेंट है, हर इंद्रिय का अपना अपना कार्य है, लेकिन उन सभी इंद्रियों का कंट्रोल हमारे ब्रेन से हो रहा है, और इसीलिए आत्मा का जो स्थान है वो ब्रेन के बीचों बीच है। अगर मेडिकल साइंस को थोड़ा बहुत भी हम जानते हैं तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल बीचों बीच आत्मा निवास करती है, ब्रेन उसका कंट्रोल केबिन है, और वहां रहकर वो पूरे शरीर को अपने हिसाब से चला सकती है। जब तक आत्मा है शरीर बड़े आराम से चलता है, खाता है, पीता है, सोच विचार करता है, लाइफ को एंजॉय करता है, लेकिन जहां आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ा क्या होता है? उसके बाद कुछ चलना फिरना कोई बात होती है? मान लो 10 कदम दूरी पर मेरा घर है, आत्मा ने यहां शरीर छोड़ा, तो क्या शरीर कहेगा कि रास्ते पर क्यों पड़े रहना, चलो घर में जाकर पड़ जाता हूं? सोचेगा नहीं, क्योंकि ये सोचने की शक्ति भी किसमें है? आत्मा में। आत्मा जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वो अपनी तीन फैकल्टीज के द्वारा इस शरीर को चलाती है, और वो तीन फैकल्टीज हैं मन, बुद्धि और संस्कार। रिपीट करेंगे, तीन फैकल्टीज, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों का अपना अपना कार्य है। मन का काम होता है सोचना, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, और फिर जो कर्म आत्मा शरीर के द्वारा करती है वो हर कर्म आत्मा में रिकॉर्ड के रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। थोड़ा और अगर हम इसको इलाबरेट करें तो माइंड क्या है? आज तक मन के बारे में भी हमने परिभाषा बहुत गलत बना दी है। कई कहते हैं मन तो बड़ा शैतान है, कोई कहते हैं चंचल घोड़ा है, बंदर की तरह है, कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन आज जब हमने समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा की एक शक्ति, आत्मा की एक फैकल्टी मन है, वो मेरा मन है, जैसे मैं आत्मा शरीर का मालिक हूं, ऐसे मैं आत्मा अपने मन का भी मालिक हूं, तो फिर मन पर कंट्रोल किसका होगा? आत्मा का। लेकिन मन करता क्या क्या है, क्या क्या कार्य है मन के? देखिए, जो भी कुछ हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील करते हैं, अर्थात जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, स्किन के द्वारा फील करते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा एक तरह से वो इनपुट इंफॉर्मेशन जाती है आत्मा में, और उसी आधार पर विचार सागर में लहरें पैदा हो जाती हैं। वो लहरें अर्थात हमारे संकल्प, हमारे विचार चार तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स और नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी अर्थात दिन भर रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी जरूरी है, हमारे रोल्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी रिलेशनशिप्स, उनसे जुड़े हुए जो संकल्प, जो विचार, जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उसे हम कहेंगे नेसेसरी थॉट्स। जहां नेसेसरी के आगे हम चले गए वो वेस्ट हो गया, पास्ट की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, जो बीत गई उसे आज सोचने से कोई फायदा है नहीं, सो दैट इज वेस्ट थॉट्स। या जिनसे हमारा कंसर्न नहीं है, बहुत ज्यादा हम सेलिब्रिटीज की बातें करते, पॉलिटिक्स की बात करते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, जहां तो मेरा रोल है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां सोचना मेरा फर्ज बनता है। उसी के लिए आत्मा के पास मन रूपी शक्ति है। लेकिन अगर हम उसको पुरानी और पराई बातों में लगा रहे हैं तो वो वेस्ट है, वो व्यर्थ हम गवा रहे हैं अपने संकल्पों की एनर्जी को। इसी तरह से निगेटिव थॉट्स, जिसे हम टॉक्सिक थॉट्स कह सकते हैं, किसी भी अवगुण या एंटी वैल्यू से रिलेटेड जो थॉट होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें भी और हमारे अपनों को, हमारे आसपास वालों को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम निगेटिव थॉट्स कहते हैं। और लास्ट है पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, शुद्ध श्रेष्ठ विचार, जिसमें हम अपना भी और औरों का भी कल्याण चाहते हैं, जो सद्गुणों के आधार पर, वैल्यूज बेस्ड होते हैं, तो वो पॉजिटिव थॉट्स। तो आप सभी बताएं, एक्चुअली हमारी मन में कौन से थॉट्स होने चाहिए, कौन से होने चाहिए? पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन हजारों लोगों पर साइकोलॉजिस्ट ने सर्वे किया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, आज थॉट की क्वालिटी को मेजर करने की भी मशीन्स हैं, तो उस आधार पर क्वालिटी ऑफ थॉट्स मेजर किया गया, और क्या कंक्लूजन निकला, ये हम आप जैसे सभी लोगों की बात है, कोई पागल या क्रिमिनल्स की बात हम नहीं कर रहे, कॉमन जैसे हम लोग हैं, ऐसे लोगों पर रिसर्च किया गया, और कंक्लूजन ये निकला कि 95% जो हमारे थॉट्स हैं वो किस क्वालिटी के हैं, आइदर वेस्ट और निगेटिव। आप सोचिए, और जो 5% थॉट्स है उसमें भी ज्यादातर नेसेसरी है, और पॉजिटिव थॉट्स 0.5-1%। आप सोचिए मन की क्या हालत होगी अगर हम अपने शरीर को 24 घंटे हार्ड वर्क कराए और आधी रोटी भी उसको खाने को ना दे, कितना कमजोर हो जाएगा शरीर। बिल्कुल वही हालत आज हमारे मन की हुई है। इसलिए मेडिटेशन जो हम करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, उसमें एक उद्देश्य ये होगा कि मन को हमें अब पॉजिटिव दिशा में ले जाना है। जो भी वेस्ट है, जो भी निगेटिव है, उसको हमें खत्म करते जाना है। नेसेसरी तो देखो रहेगा, लाइफ है, आत्मा शरीर में कर्म कर रही है, नेसेसरी तो रहेगा, लेकिन बाकी जो परसेंटेज है वो हमारी पॉजिटिव थॉट्स की होनी चाहिए। और वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए या माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा का दिया गया ज्ञान सबसे अधिक इफेक्टिव है। सिर्फ बी पॉजिटिव टी शर्ट पर लिखने से हम पॉजिटिव नहीं हो जाते, थिंक पॉजिटिव सिर्फ एक दूसरे को बोलने से पॉजिटिविटी नहीं आती है, ये हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी होगी, और वो ट्रेनिंग ही मेडिटेशन कहलाती है। सो आत्मा की पहली शक्ति मन, जिसका काम है विचार करना, जो भी संकल्प है, भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, स्मृतियां हैं, ये सारा मन का काम है। दूसरी शक्ति आत्मा की है बुद्धि। बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। देखिए, मन में तो जो भी देखा, जो भी सुना, उसके अकॉर्डिंग थॉट्स क्रिएट होंगे, लेकिन उसको फिल्टर करने का काम बुद्धि करती है। आप सभी अपने लाइफ के अनुभव से चेक कीजिए, क्या जो भी विचार मन में आता है हम उसको कर्म में लाते हैं? लाते हैं। रस्ते चलते आइसक्रीम दिख गया, मन में विचार आया मुझे खानी है, सच में हम खाते हैं या नहीं खाते? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, है ना। रस्ते चलते कोई बहुत बड़ी कॉन्सर्ट है उसका पोस्टर दिख गया, कोई फिल्म का पोस्टर दिख गया, मन में तो आया कि मुझे देखना है, लेकिन सच में आप देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे ये डिसाइड कौन करेगा? ये काम है बुद्धि का। बुद्धि हमारी आत्मा का एक लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, जो हमारे मन के संकल्पों को तोलती है। बुद्धि के पास जितना विवेक है उस आधार पर वो उसको परखती है कि इस थॉट को अगर मैं एक्शन में लाती हूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये संकल्प, ये विचार अच्छा है व बुरा है, एथिकली ये राइट है या रॉन्ग है, इसका रिजल्ट फायदा होगा या नुकसान होगा, और अकॉर्डिंगली बुद्धि डिसीजन लेती है। और इसीलिए हम देखते हैं सारे दिन में लगभग हम 20,000 से 25,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म एक्शन हमारे कितने होते हैं? बहुत कम। और उसका कारण बीच में फिल्टर काम कर रहा है। आप सोचिए कितनी वंडरफुल कुदरत है कि ऐसा एक फिल्टर हमें ऑलरेडी दिया गया है। वैसे तो मन को हमने ट्रेनिंग देनी है पॉजिटिव सोचने की, लेकिन कई बार सराउंडिंग ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ तो निगेटिव मिक्स भी हो सकता है ना, तो उसको फिल्टर करने का काम बुद्धि ने करना है। और इतना अच्छा फिल्टर हमारे पास होने के बावजूद, अब आप सच्चे मन से बताइए, हमारे से गलतियां होती है या नहीं होती? क्या हमें बाद में ऐसा बोलना पड़ता है कभी कि मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं वो ऑप्शन चूज करते तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा नहीं वैसा करते, यहां नहीं वहां जाते तो ज्यादा अच्छा था? होता है ऐसा? तो दैट मीन्स हमारे पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि है बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। मैंने बुद्धि को एक नाम दिया फिल्टर, जस्ट लाइक चाय का फिल्टर, चाय की छाननी हम रोज यूज करते हैं। क्या होता है छाननी से? पत्ती ऊपर रह जाती है, कप में हमें चाय मिल जाती है। अगर उस छाननी में छेद है, होल्स है, तो क्या होगा? चाय के साथ साथ पत्ती भी कप में आएगी और जब हम चाय पिएंगे मुख कड़वा हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा हमारा। होता है ऐसा? बुद्धि रूपी फिल्टर में भी बुद्धि कमजोर होने के कारण, वीक होने के कारण, जो निगेटिव थॉट्स को उसको खत्म करना चाहिए वो नहीं कर पाती है, जिसको रोकना चाहिए उसको रोक नहीं पाती। वो थॉट्स डायरेक्ट हमारी एक्शन में आ जाते हैं, हमारे संबंध कड़वे हो जाते हैं, कर्म गलत हो जाते हैं, और उन गलतियों के कारण जैसे जीवन में कड़वाहट आ जाती है। तो यहां बुद्धि रूपी फिल्टर को ठीक करने की जरूरत है। उसमें होल्स भी नहीं होने चाहिए और ब्लॉकेजेस भी नहीं होने चाहिए। कई बार छाननी में इतनी ब्लॉक हो जाते हैं होल्स कि चाय भी नहीं कप में मिलती। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, करना चाहते हैं हम लेकिन चाहकर भी कर नहीं पाते। ऐसी भी बहुत लंबी लिस्ट होती है हमारे पास, जबकि वो एथिकली राइट है, फायदा ही मिलने वाला है, लेकिन हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स कि बुद्धि में ब्लॉकेज है। तो बुद्धि की चाहे ब्लॉकेज है चाहे होल्स है, उसको हमें ठीक करना होगा। अब बुद्धि कोई मटेरियल चीज तो है नहीं जो किसी मैकेनिक के पास ले जाओ और ठीक करे, इसे हमें स्वयं ठीक करना होगा। और हाँ, वो सुप्रीम पावर परमात्मा, वो हमें इसमें मदद जरूर कर सकते हैं। और इसीलिए हमने जब भी प्रार्थना की, हमने भगवान को बोला सबको सन्मति दे भगवान। तो सन्मति क्या है? अच्छी बुद्धि, जो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सके, जो रोकना है जो निगेटिव है इसको वो खत्म कर सके, और जो पॉजिटिव है जो अच्छा है मेरे लिए संसार के लिए उसको हम कर्म में ला सके। तो ऐसी सन्मति सद्बुद्धि हमने भगवान से मांगी। तो भगवान, जिसका परिचय कल के मेडिटेशन सेशन में हमें मिलेगा, उनसे जब हम बुद्धि को कनेक्ट करते हैं तो उस सर्वशक्तिमान की शक्ति बुद्धि के होल्स या ब्लॉकेजेस दोनों को ठीक कर देती है। और तब ये जो इतनी सारी पावर्स है, बुद्धि के जो सारे फंक्शंस है, वो हम प्रॉपरली कर पाते हैं। ना हम परखने में धोखा खाएंगे, ना हमारे डिसीजंस गलत होंगे, ना लॉजिक कभी हमारा व्यर्थ जाएगा, बहुत सही रीति से बुद्धि सारे काम कर पाएगी। मन को पॉजिटिव बनाने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज काम करेगी, बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने के लिए मेडिटेशन, जिसके द्वारा हम परमात्मा से खुद को कनेक्ट करते हैं, वो काम करेंगे। तो पहली शक्ति आत्मा की मन, दूसरी बुद्धि और तीसरी संस्कार। संस्कार अर्थात इंप्रेशन, हमारे ही किए हुए कर्मों का रिकॉर्ड, उसका रजिस्टर है हमारे संस्कार। हम सभी ने सनातन धर्म के हिसाब से एक बात सुनी है कि हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास होता है, और वो किसके पास रजिस्टर है सारा? चित्रगुप्त जी के पास है ना। तो चित्रगुप्त कोई भगवान जी के पास अलग से व्यक्ति बही खाता मेंटेन करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। हम सभी के आत्मा के ही अंदर जो संस्कार है उसमें हमारे हर कर्म का रिकॉर्ड है, चाहे वो किसी ने देखा नहीं भी हो, बिल्कुल चोरी से चुपके से सबसे छिपाकर कोई कार्य किया हो, चाहे वो कार्य अच्छा हो व बुरा हो, सबने मिलकर किया हो, अकेले किया हो, दिखा के किया हो, छिपा के किया हो, जो भी कर्म आत्मा ने शरीर के द्वारा किया उसका ऑटो सेव ऑप्शन होता है आत्मा में, वो ऑटोमेटिकली हमारे रजिस्टर में, हमारे रिकॉर्ड्स में चला जाता है। और ऐसे पांच तरह के संस्कारों का मिक्सचर होती है हमारी पर्सनालिटी। कुछ हमारे पास्ट जन्म के संस्कार हैं जो छोटे बच्चे में लगभग 5 साल तक दिखाई देते हैं। तो पास्ट जन्म, पुराने पूर्व जन्म के संस्कार, जिन माता पिता की परवरिश में हम पलते हैं, या हम कह सकते हैं खानदानी संस्कार, वो भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसा संग वैसा रंग, जिस तरह की कंपनी में हम रहते हैं वैसे हमारे संस्कार डेवलप होते हैं। वर्तमान में इन सभी संस्कारों का हम मिक्सचर बन के चल रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम खुद को समझने की कोशिश करें तो आज का हमारा जो व्यक्तित्व है, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो पॉजिटिव निगेटिव संस्कारों का एक मिला जुला मिक्सचर है ये। लेकिन क्या सच में मैं हमेशा से ऐसी हूं? नहीं, आत्मा के कुछ ओरिजिनल संस्कार, जिसको हम इटर्नल या इनेट क्वालिटीज कह सकते हैं, ओरिजिनली हम वो थे। और जो भी पास्ट बर्थ के, बर्थ बाय बर्थ जो संस्कार मिलते हैं, अलग अलग हमारे पेरेंटल खानदानी संस्कार हैं, संघ के आधार पर संस्कार मिलते हैं, ये सारी हमारी एक्वायर्ड क्वालिटीज है, ये बाहर से धारण किए हुए संस्कार है। अर्थात आज अगर मैं कहती हूं कि मेरी तो बहुत गुस्से वाली नेचर है, मुझे डर बहुत लगता है, मैं बहुत सेंसिटिव नेचर वाली हूं, तो एक्चुअली ये हमारी नेचर नहीं है। हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो कौन सी नेचर है? 7 क्वालिटीज बताई जाती हैं, जिनके पास भी डायरी पेन है आप नोट कर सकते हैं। आत्मा की 7 इननेट क्वालिटीज, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग, इसी प्रकार आत्मा भी 7 रंगों से सजी हुई है। और ये 7 क्वालिटीज है, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। हमारी ओरिजिनलिटी ये है, और इसका सबूत ये है कि ये 7 क्वालिटीज हमें बहुत पसंद है। यहां कोई है जो कहेगा इनमें से कोई एक क्वालिटी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए? कोई नहीं। अच्छा, जो कहते कि ये 7 क्वालिटीज हमें चाहिए वो हाथ उठाए। 7 क्वालिटीज हमें चाहिए, और वो चाहिए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति चाहिए तो हम ऐसे स्थान पर आ जाते हैं, आश्रम में, मंदिर में चले जाते हैं, हिल स्टेशंस पर चले जाते हैं। प्यार चाहिए तो बहुत सारे रिलेशंस हम जोड़ते हैं। सुख चाहिए तो पैसे के पीछे दौड़ते हैं। है ये आत्मा की इननेट क्वालिटीज, लेकिन हम इसको ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में। मिलेगी? मिलेगी नहीं ना। मान लीजिए मोबाइल आप आज जहां बैठे हैं वहां छोड़कर चले जाते हैं, और बाहर पूरे ज्ञान सरोवर में ढूंढ कर आते हैं, मिलेगा बाहर कहीं? नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? इसी हॉल में, और जिस चेयर पे छोड़ा है वही मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये जो हम बाहर के लोगों, बाहर की चीजों में ढूंढने हैं, अब हमें एक यात्रा शुरू करनी है, अंतर जगत की यात्रा। आत्मा के अंदर ऑलरेडी ये सारी क्वालिटीज हैं, बस उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हमारी हालत उस याददाश्त खोए हुए व्यक्ति की तरह हुई है जिसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, चाहे उसके बैंक में करोड़ों का बैंक बैलेंस है। मैं आत्मा हूं ये भूलने के कारण आत्मा के अंदर की इन क्वालिटीज को हम फील नहीं कर पाते, फिर हम दूसरों के सामने या परमात्मा से उसको मांगने लग जाते हैं। मेडिटेशन कभी भी हमें मांगना नहीं सिखाता। मेडिटेशन की ये जो पहली स्टेप हम सीख रहे हैं, पहला लेसन हम सीख रहे हैं, ये है ही यही कि अपनी उन क्वालिटीज को हम एक्सप्लोर करें। मैं आत्मा ऑलरेडी शांत स्वरूप हूं, आई एम अ पीसफुल सोल, इसी को हम कहते हैं ओम शांति। तो अब से जब भी ओम शांति कहेंगे, बहुत बार बोलने वाले हैं आप इन चार दिनों में, तो क्या याद आना चाहिए? ये मेरी अपनी पहचान है, ओम अर्थात मैं आत्मा, और शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ऑलरेडी मेरे अंदर वो क्वालिटी इनबिल्ट है, जस्ट बार बार मुझे उसको रिमाइंड कराना है। इसी तरह से मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। तो अपनी इन क्वालिटीज को हम जितना खुद को बार बार याद कराएंगे, वो धीरे धीरे सरफेस पर आती जाएगी। किसी से मांगने से नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो भी टेम्पररी मिलेगी। उधार की चीज तो उधार की होती है ना, और अपनी चीज अपनी होती है। तो इन क्वालिटीज को हमें अपने अंदर से हमें जागृत करना है, और वो जागृत जब हम करने लगेंगे मेडिटेशन में, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ इन क्वालिटीज को जब हम रियलाइज करने लगेंगे, तब कहीं कहीं ये दिखेगा कि क्वालिटीज तो है मेरे अंदर, लेकिन बहुत समय से हम एंटी क्वालिटीज को यूज करते रहे हैं। शांति के बदले डर को, गुस्से को यूज करते रहे हैं, प्रेम के बदले नफरत को यूज करते रहे हैं, शक्ति के बदले डर को यूज करते रहे हैं। तो कहीं कहीं ये दिखेगा कि ये क्वालिटीज जितनी परसेंटेज होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो वो फिर कहां से भरेंगे अपने अंदर? उसके लिए हम कनेक्ट करेंगे परमात्मा से, परमात्मा जो इन सभी क्वालिटीज का अनलिमिटेड स्टॉक है, प्यार का, शांति का, सुख का सागर है, उनसे हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे। जिस प्रकार बॉडी को पानी की प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है, तो आत्मा की शांति की प्यास कुछ तो बुझेगी जब हम स्वयं के अंदर की शांति को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, और फिर जो रह जाती है उसे हम परमात्मा से कनेक्ट करके करेंगे। ठीक है, तो ये 7 क्वालिटीज, सप्ताह के 7 दिन आप रोज एक एक क्वालिटी लीजिए और अपने आप को याद कराइए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं एक बहुत प्योर सोल हूं। आप चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, चाहे अपनी भाषा में, खुद को महसूस कराना है कि मस्तक पर चमकता हुआ एक ज्योति बिंदु सितारा, मैं आत्मा, और आत्मा के साथ इन 7 में से कोई भी एक क्वालिटी। कब करेंगे यह अभ्यास? बैठकर करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते कर्म करते हुए, चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे हम सोने जा रहे हैं, बार बार स्वयं को हमें याद कराना है कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, मैं आत्मा शुद्ध हूं, चैतन्य हूं, अविनाशी हूं। और इसी अभ्यास के साथ हम मेडिटेशन की पहली स्टेप पर आते हैं। तो चले हम सभी कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। एक बहुत पवित्र आध्यात्मिक वातावरण में हम ये 4 दिन रहने वाले हैं। यहां पर इस अभ्यास को जितना हम पक्का करेंगे, अपने कार्यक्षेत्र में जाने के बाद उसे बहुत अच्छे से हम कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए अभी जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे, मैं शब्दों में बोलूंगी, आपको उसे मन में महसूस करना है। इस सुंदर सुहानी संध्या काल में ज्ञान सरोवर के इस पवित्र प्रांगण में इस मानव शरीर में स्वयं को अनुभव करें, पूरे शरीर में जो चेतना जो ऊर्जा फैली हुई है उस सारी ऊर्जा का स्रोत महसूस करें अपने मस्तक के बीच एक अति सुंदर सूक्ष्म सितारा सफेद प्रकाश का एक चमकता हुआ बिंदु जिसका प्रकाश पूरे शरीर में फैलकर इसके द्वारा कार्य कराता है। मन को पूरी तरह से एकाग्र करे आत्मारूपी सितारे पर और स्वयं को बताए मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में असीम शांति से भरपूर अति शुद्ध और शक्तिशाली मैं आत्मा इस शरीर का मालिक आंखों द्वारा देखने वाली कानों से सुनने वाली मुख द्वारा बोलने वाली इस शरीर के प्रत्येक कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली मैं एक चेतन सत्ता एक इटर्नल एनर्जी मैं आत्मा हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। अंतर मन की गहराई में खुद को ले चले कितनी गहन शांति स्वीट साइलेंस है। कोई हलचल कोई चिंता नहीं मन एकदम शांत है पॉजिटिव है प्योर है। मैं शांत स्वरूप आत्मा इस शांति की गहराई में समाती जा रही हूं। गहरी शांति असीम शांति का अनुभव कर रही हूं। ओम शांति ओम शांति।